ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 5196220660 quicktruckcube.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मारने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241 647-769-0241।
BNK proudly brings you Big Secret Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Midway. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible and legendary live in concert with Sultan. Enjoy free parking at admission. For sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कनाडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फलो फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटा, बाटियां सब कुछ मिलदा। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहनिया सोहनिया रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ 801
Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही शिनवारी गोट कड़ाही निहारी हलीम पाए बिरयानी सीख कबाब चिकन टिक्का शवरमा पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन वही देसी अंदाज और वही देसी जायका 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3 ऑर्डर नाउ कॉल 416-526-6800
वेलकम बैक टू आम सामीन को जो हमें 770 एम डायल पर सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब अब से लेकर तकरीबन सात बजे तक गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेकर आएंगे और 7 बजे से लेकर तकरीबन 8:15 बजे तक लियाकत मलिक साहब आपको पता है कि हर जुमेरात को प्रोग्राम लेकर आते हैं भूली बिसरी यादें और आज भी हमारे साथ जो हैं वो 7 बजे लियाकत भाई जुड़ जाएंगे और वो आपके लिए भूली बिसरी यादें प्रोग्राम लेकर आएंगे। आप रेडियो पर सुन सकेंगे और टेलीविजन पर ये लाइव नशर भी होगा। जनाब स्पोर्ट्स की खबरें थी आज बहुत सारी। आपको पता है सबसे बड़ी खबर हमारे अरशद नदीम साहब ने जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। तमाम ही पाकिस्तानियों को जो सुन रहे हैं और तमाम ही उन लोगों को जो स्पोर्ट्स को जो है वो फैन है तो आप सबको जो है वो मुबारकबाद। पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल तो मुबारकबाद के हकदार हैं अरशद नदीम साहब और पूरी पाकिस्तानी कौम और हर वो फर्द जो स्पोर्ट्स का फैन है। प्रोग्राम में शाजिया मलिक साहब आपको खुश आमदीद कह लेते हैं क्योंकि खबरें जो हैं वो पक गई हैं और प्रेशर कुकर की सीटी भी बज गई है। इससे पहले कि ये मेरी सीटी बंद कर दें तो मैं इनको खुश आमदीद कहता हूं। शाजिया जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भैया आपकी आंख सूजी हुई है, बेगम ने मुक्का चुका मारा रात को, ये हरकत।
अच्छा मसला क्या होता है, देखें मेरी बात सुन, जब हमें वो बताया गया था ना कि आपने एज एन होस्ट बनना है प्रेजेंटर बनना है तो पहली चीज किस चीज का ख्याल करना होता है?
बुद्धि का
नो कि माइक आपके मुंह के सामने हो।
नहीं आज मैंने इसलिए भी उधर रखा हुआ था, मैंने कहा जरा तुम्हें बैश कर।
नहीं वैसे तो आपकी आवाज तो वैसे ही चली जाएगी, आपको पता है
तो दमदार आवाज है, लेकिन मैंने कहा जरा
ठाकुर
पूछ लूं जरा पहले ना लोगों के आने से पहले तुमसे पूछ लूं, ये बेगम से मार्शा तो नहीं पर अगर तुम उसको क्लियर कर दो फिर मैं इसको कर लाऊंगी सामने और मैं कहूंगी वेरी गुड, ओहो रात को तुमने बॉक्सिंग की, बेगम से मार नहीं खाई, वेरी गुड।
ये वो होता है ना कि आपको पता है सम टाइम ये कुदरत का निजाम है, चांद को ग्रहण भी लग जाता है। कुदरत का निजाम है, इसमें कहीं नथिंग पर्सनल, नथिंग वो कहते हैं ना कि ये एक कुदरत का निजाम है।
अच्छा अच्छा
वो कहीं ना कहीं चांद को भी
ग्रहण
लगता है।
हाय हाय
तो वो कोई बात नहीं, सिलसिला चलता रहेगा, अभी तो
अच्छा
एक ही लाइट फ्यूज हुई है।
अच्छा दोनों करने का हुआ है?
नहीं नहीं ये हो जाएगी सही है इंशाल्लाह,
यानी दूसरी भी खराब हो जाएगी?
नहीं वो मुझे तो ऐसा
दूसरी ट्यूबलाइट भी खराब तो फिर तो तुम चीने बन के बैठोगे यहाँ पे ऐसे।
तो ये चीनों की आप कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या उनकी बेइज्जती कर रही हैं?
अब आपने उसको जैसे भी लेना आप ले सकते हो, लेकिन चीने तो जो होते हैं बड़े मतलब कहाँ के कहाँ पहुंच गए ना, कितनी काबिल कौम है, तो मैंने तो उस चक्कर में कहा था। अब तुम जो है तुम्हारा
काबिल कौम तारीफ,
इसी वजह से मैं कहा था तुम चीने बन जाओगे, तो अब आईंदा से तुम्हें चीना नहीं कहना। मैंने
चीना ना कहा मुझे, अब जो हूं मैं वैसे भी आज तो किसी और कौम के लिए मुझे सुनने की मतलब मुझे चीनी अफ्रीकन कैनेडियन तो हूँ लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए
अरशद नदीम
इस वक्त से हो रही है पाकिस्तानी तुझे सलाम।
बिल्कुल
जो आज अरशद नदीम साहब ने कर दिया है,
जो कमाल किया है वाकई। ये सारे ये बाबर आजम शाहजम सबको पीछे छोड़ दिया है।
क्या क्रिकेट, कौन सा क्रिकेट
खेली जाती है हमारे मुल्क में?
क्रिकेट कोई गेम है?
कोई गेम है हमारे मुल्क में खेली जाती है?
कोई गेम में
कुछ नहीं है,
गेम नहीं।
और ये सोचो ये लड़का कुछ अर्सा पहले तक इसके पास जैवलन तक भी नहीं था
पता है,
यानी सोचो यार कसम से क्या हालत है। अच्छा पहन आज है खबरें बहुत ज्यादा और टाइम है बहुत कम, तो फटाफट हम अपनी
सुना देंगे गर्मा गर्म खबरें।
जी गर्मा गर्म, इसलिए कैसे ना हो के वो ठंडी हो जाए ना, तो ठंडी तो रोटी भी खाई जाती तो इसलिए। अच्छा जनाब, ऑन्टारियोस लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे ब्रिज डेस, इस पे जाएं मजे मजे के खाने खाएं। दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में उसका नंबर है 9052323663 और दूसरा ओकविल में है उसका नंबर है 9052262294। और जनाब 10 अगस्त को 10 जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ एक बंदा जो है यानी कि नाजिर जिया साहब वो करवा रहे हैं मेगा मेला हलाल फूड फेस्टिवल एंड प्रॉपर्टी एक्सपो 2024। तो आपने जाना है ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड्स में जो कि कैलेडन में है, और आप वहां पे 12 बजे से ये शो शुरू होएगा, तो आप जाएं और वहां पे जाके इन आर्टिस्टों का मजा लें। और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, इस पे भी आप जा सकते हैं, बड़ी जबरदस्त जगह के ऊपर ये लोकेटेड है 29352 रोड मिसिसागा में। अगर आप अपने कोई भी छोटे बड़े इवेंट्स करना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर लें 6479653823 पे। ठीक है जी, ओके जनाब हम शुरू करते हैं अपनी खबरें, और सबसे पहली जो खबर वो है वो ये तो है, आपको मैं बता रहे हैं बहुत दिनों से कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है और ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है वो बहुत दिनों से कह रही थी कि इसराइल से और लेबनान से आप निकल जाएं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो लड़ाई झगड़ा होने वाला है। तो उसी सिलसिले में आज ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने फिर से कहा है कि हमने डिसाइड किया है कि हम जो डिप्लोमैट्स के बच्चे और उनके गार्डियंस यानी कि उनकी जो फैमिलीज हैं उनको इसराइल में से निकाल दिया जाए क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो वॉर है वो फैल सकती है। हमें ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा जी कि ये हमने टेम्पररी तौर पे उनको रीलोकेट कर रहे हैं सेफ थर्ड कंट्री के अंदर, लेकिन जो हमारा एम्बेसी का स्टाफ है इसराइल के अंदर वो रहेगा। जो वो कह रहे हैं एम्बेसी का स्टाफ तल अवीव में है या जो बैरूत में है या जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एरिया में वो सब ऑपरेशनल रहेंगे, और जो जितनी भी नेसेसरी और एसेंशियल सर्विसेज हैं वो कैनेडियंस को देंगे टू हैव काउंसलर सर्विसेज। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो हमारे मिशन्स लेबनान में और रमल्ला में हैं वो भी काम करते रहेंगे और वो स्टाफ भी वहां पे रहेगा, और उन सब लोगों को ये जो इन एरियाज में हमारे मिशन्स हैं उनको हम अपडेट करते रहेंगे सिचुएशन के बारे में। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा जो है उसने जो मेजर्स लिए हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अभी सैटरडे को ही जैसे मैंने भी आपको कहा कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा था कि आप इसराइल और लेबनान को ट्रैवल ना करें, अवॉइड करें इन जगहों पर, और जो वहां पे लोग थे उनको कहा था कि जब तक कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही हैं आप जब निकल सकते हैं तो आप निकल जाएं। ये जो यहां पे एक मैंने आपको खबर सुनाई थी कि एक बाप और एक बेटा उसका वो करने वाले थे टेररिस्ट अटैक्स में कुछ इन्वॉल्व थे करने वाले थे जो उनको पकड़ लिया गया, उस सिलसिले में आज काफी खींचा गया। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लॉन जो हैं उनसे पूछा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने कैसे इनको आने दिया, उसका ये जवाब दे रहे थे लेब्लॉन साहब, और उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है कि इन दो लोगों का जो जिनका के ताल्लुक टेररिस्ट लिंक के साथ था इनको कैसे अलाउ किया गया कनाडा के अंदर आने के लिए। ये थे अहमद फुआद मुस्तफा अलदीदी, 62 ईयर्स इनकी एज थी, और इनके बेटे मुस्तफा अलदीदी 26 ईयर्स के थे। इनको रिचमंड हिल के एक होटल से पकड़ा गया था ऑन टेररिज्म चार्जेस क्योंकि ये कंस्पायर कर रहे थे यहां पे बहुत ही ट्रोनो के अंदर मेजर और वायलेंट और सीरियस अटैक्स करने के लिए। इनके ऊपर 9 टेररिस्ट चार्जेस लगाए गए हैं इंक्लूडिंग कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर जो है वो आइसिस ऑफ इराक एंड लेवेंट, यानी कि इनका ताल्लुक भी अभी फाइंड आउट उन्होंने किया है। वो कहते हैं जी कि आइसिस के साथ इनका ताल्लुक था। जो आरसीएमपी थी उन्होंने कहा था जी कि ये अगर इनको रोका ना जाता तो ये बहुत ही एडवांस स्टेज में थे ऑफ प्लानिंग सीरियस एंड वायलेंट अटैक्स इन जो है वो ट्रोनो। अब जो ये जो एल्डर अलदीदी है इसके ऊपर तो सारे चार्जेस जो हैं कनाडा के अंदर गलत काम करने के हैं, लेकिन एक जो चार्ज है वो कनाडा के बाहर भी है। लेब्लॉन साहब ने आज कहा कि पब्लिक सेफ्टी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स जो कि अक्सर मिलकर काम करते हैं जब लोगों को हम सिटीजनशिप देते हैं वो अब रिव्यू कर रहे हैं ये इवेंट्स और क्रोनोलॉजीज की देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल थे, क्या चीजें थी, क्या
क्या प्रॉब्लम था, कैसे ये लूप होल क्या था जिसकी वजह से ये अंदर आए। आरसीएमपी ने कहा जी कि ये जो इनका फादर है, ये जो बड़ा है यानी एलदीदी है, वो तो कैनेडियन नेशनल है, लेकिन उसका बेटा जो है वो नहीं है। इसके ऊपर बात करते हुए कंजर्वेटिव हाउस लीडर एंड्रयू शीयर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा जी कि हम फेडरल गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि वो क्या जानते हैं, क्योंकि कैनेडियन हैव द राइट टू नो कि किधर क्या गलत हुआ, ये कैसे कनाडा के अंदर एंटर हुए, इनको कैसे सिटीजनशिप मिली। लेब्लॉ जो है उन्होंने भी कहा जी कि हम बहुत कुछ चीजें रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की होती हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी जो चल रही होती हैं उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, खासतौर पे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर। वो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो कहते हैं जी कि हम अब जो है वो देखेंगे कि वो कैसे ये ट्रायल जो है वो करते हैं, उसके बेस पे जो चीजें सामने आएंगी वो भी शेयर की जाएंगी। इससे पहले एनडीपी की जो एमपी थी एलिस्टर मैकग्रेगर, उन्होंने भी कहा है, एक लेटर बल्कि लिखा उन्होंने चेयर को, और उन्होंने कहा है यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो चेयर है उनको उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा जी कि इस चीज के अंदर आप देखें कि टेररिस्ट जो हैं वो कनाडा के अंदर एंटर कैसे हो रहे हैं। तो आज काफी गर्मा गर्मी रही तीनों पार्टीज के बीच में और इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्लॉक के बकवा को भी कहा है कि आप भी इसके ऊपर जरा देखो। इंग्लैंड के अंदर जैसे हम आपको बता रहे थे कल से ही कि उनको पता चला था कि थर्सडे के दिन यानी आज 30 रैलीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, उसकी वजह से काफी हैवी सिक्योरिटी और अरेस्ट जो हैं यहां पे यूके के अंदर किए गए हैं और ये जो राइटिंग शुरू हुई थी बहुत वाइड स्प्रेड, ये रेसिस्ट अटैक्स जो थे मुस्लिम्स के ऊपर किए गए थे और उनके मॉस्क के ऊपर और दूसरी जगहों पे किए गए थे, वो एक फॉल्स एक न्यूज आ गई थी ऑनलाइन में जिसमें कि कहा गया था कि तीन यंग बच्चियों का जो जुलाई 29 को स्टैबिंग करके डेथ उनकी हुई है साउथ पोर्ट में, उसके अंदर एक मुस्लिम माइग्रेंट जो था वो शामिल था, हालांकि वो था नहीं शामिल। पुलिस ने आज जो है तकरीबन 480 के करीब लोगों को अरेस्ट किया है और 150 जो है उनको चार्ज भी किया गया है, डजन जो है उनको सेंटेंस किया गया है इन फास्ट ट्रैक जस्टिस सिस्टम। लंदन के कमिश्नर जो हैं मार्क राउली, उन्होंने कहा जी कि हमने जो अरेस्ट किए उनमें से बहुत सारों के तो क्रिमिनल बैकग्राउंड थे और हमें पता चल रहा है कि ये राइट्स इनके खुद के थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ भी नहीं था इसके अंदर। प्रोटेस्ट जो है वो बहुत इनके बड़े बड़े सिटीज में इंक्लूडिंग लंदन, ब्रिस्टल, ऑक्सफर्ड एंड बर्मिंगम के अंदर जो है वो चल रहे हैं। आज भी जो क्राउड्स जमा हुए थे वो चैंट कर रहे थे रिफ्यूजीज आर वेलकम, लंदन अगेंस्ट रेसिज्म, स्टॉप फॉर राइट और माइग्रेशन नॉट अ क्राइम, तो ये सारे वो लेके चल रहे थे। बहरहाल बहुत आज ज्यादा तारीफ की प्राइम मिनिस्टर ने और वैसे दुनिया ने भी तारीफ की कि जिस तरह जो इंग्लैंड की पुलिस है खासतौर पर लंदन पुलिस ने तमाम के तमाम ये जो रैलीज और ये चीजें थी इनको बड़ा कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी जो यूके की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि वी आर स्टिल ऑन हाई अलर्ट, तो यानी कि आने वाले दिनों में यानी ढीला होने का कोई वक्त नहीं है, आने वाले दिनों में शायद इस तरह के और भी कुछ रैलीज हो सकते हैं। कमला हैरिस साहबा जो है जी उन्होंने अपनी पहली रैली जो है टिम वॉल्स के साथ जो है वो होल्ड किया, टिम वॉल्स वैसे काफी लगते तो जरा बुरे थे लेकिन ही इज जस्ट अबाउट 60 इयर्स ओल्ड, उनके साथ आज किया और उन्होंने कहा जी कि मेरी जो कैंपेन है इट इज फॉर द फ्यूचर ऑफ यूएसए, ये रैली इन्होंने जो है पेंसिल्वेनिया के अंदर लाई थी। डेमोक्रेट्स जो है वो होप कर रहे हैं कि वॉल्स जो है वो बड़ा ही चूंकि सीधा साधा सिंपल हम्बल किस्म का आदमी है तो काफी वोटर्स जो है इनको वोट देंगे, खासतौर पे मिड वेस्टर्न रीजन के अंदर जिसके के अंदर जो इनकी स्विंग स्टेट्स हैं जैसे कि विस्कॉन्सन एंड मिशिगन वहां पे। इस मौके पे बात करते हुए हैरिस ने कहा जी कि वॉल्स जो हैं वो एक लीडर हैं जो कि पूरी नेशन को यूनाइट करेंगे और ये हमेशा से इन्होंने मिडिल क्लास के लिए फाइट किया है और बड़े पेट्रियाटिक किस्म के बंदे हैं और बड़े इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमिसेज हैं जो कि ये यूएस की पब्लिक के साथ करना चाहते हैं। खुद कमला हैरिस जो थी वो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थी कैलिफोर्निया की एंड शी इज ऑल्सो जस्ट अ ईयर यंगर टू हिम, 59 ईयर्स उनकी एज है और उन्होंने कहा जी कि आज ट्रंप साहब के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज उनको किया और उनको कहा जी कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 10,000 के करीब तकरीबन लोग यहां पर रैली में जमा हुए हुए थे और उन्होंने काफी जो है ट्रंप साहब के खिलाफ बातें की, इसमें उन्होंने कहा जी कि ये फाइट जो है ये मेरे या किसी और के लिए या अगेंस्ट ट्रंप नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के लिए है और उन्होंने कहा जी कि ये जो है ट्रंप साहब हमेशा हमारे लॉज का मजाक उड़ाते हैं, केओस लाते हैं मुल्क के अंदर, डिविजन्स लाते हैं और उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ये शो नहीं करता है कि वो प्रेसिडेंट रहने के लायक हैं और कोविड के जमाने में हमारी जो इकोनॉमी थी उसको भी बहुत धचका मिला है और ये जो है ये मिस्टेक थी कि इनको लेकर आए थे ट्रंप साहब को, तो उनकी जो अच्छाइयां हैं वो कम हैं और क्राइम्स अगर उनके मैंने अभी तक काउंट नहीं किए हैं लेकिन फिर भी जो क्रिटिसिज्म्स की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी है, ये कहा जी आज कमला हैरिस ने। यूएस जो है उसने अब दोनों ही ईरान और इसराइल दोनों को ही वो कह रहे हैं जी कि आप लड़ाई मत करो। इस सिलसिले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो आज बात कर रहे थे मीडिया के साथ और उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ज्यादा इंटेंस डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ और हम बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन जो है ईरान और इसराइल दोनों के साथ कर रहे हैं और हम उनको बता रहे हैं कि भाई आप लड़ाई को ज्यादा फ्लेयर अप मत करो। उन्होंने कहा जी कि लेकिन फिर भी इसराइल जो है उसको तो हम जो है वो डिफेंड करेंगे हमेशा और लेकिन फिर भी हम दोनों पार्टीज को कह रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी एस्केलेशन और मिसकैलकुलेट किया तो फिर ये जो चीजें हैं ये हाथ से बाहर निकल जाएंगी। उन्होंने कहा जी कि ये जो अटैक्स हैं उनका रिस्क बड़ा हाई है उस रीजन के अंदर और इसीलिए हम जो हैं चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा ना करें। आज उन्होंने बड़ा ललकारा हमास के जो नए चीफ हैं इस्माइल सिनवार उनको भी, उन्होंने कहा जी सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है तुम चीजों को ज्यादा मत भड़काओ। मतलब एक कमाल हो गया पाईजन एंथनी ब्लिंकन साहब मारिया मार कौन रहा इसराइल मार रहा है तुहाडे असले दे नाल मार रहा है लोगों के उत्ते जिहड़ा अटैक कॉन्सटेंटली लेबनान ते कर रहा है ईरान नूं तंकियां दे रहा है ईरान के अंदर उन्हां दे बंदे मार रहा है और आप कह रहे हो ईरान को कि भई हम इसराइल के साथ खड़े रहेंगे और हम उसको असला भी देंगे लेकिन ईरान और इसराइल जो एस्केलेट ना करें। वाह 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 क्या बात है सलाम है आपको। तो ये आज उन्होंने बातें की ओआईसी ने इस मौके पे, असल में इन्होंने ये बातें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कैसे की क्योंकि आज सुबह जो थी ओआईसी ने एक दफा फिर से ब्लेम किया है इसराइल को, इसराइल इस्माइल हानिया के डेथ के लिए ईरान के अंदर अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उन्होंने कहा जी कि इसराइल जो है वो इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रहा है पैलेस्टाइन को और बहुत ही हीनियस किस्म के अटैक्स जो है वो कर रहा है और ये जो खास तौर पे ईरान के अंदर घुस के उसकी सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज करके ये जो उन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत था। पुटिन साहब जो है वो भी ईरान से ही बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कोई रिटेलिएटरी अटैक आप इसराइल पे ना करें। आज रीजन के अंदर इतनी ज्यादा टेंशन बढ़ गई हैं कि जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी वो आज अंकरा बड़े शॉर्ट विजिट पे पहुंचे और वहां पे तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने भी इस चीज को कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसको रोकने की जरूरत है। तो अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी मिडल ईस्ट में हैं और ये भी इधर हैं तो ये अब इसमें काफी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यूएस ने आज वार्न किया है तुर्की को कि बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आपने रशिया के साथ मेल जोल बढ़ाए रखा और खास तौर पे उसको यूएस मिलिट्री लिंक्ड हार्डवेयर जो है आप भेजते रहे क्योंकि मॉस्को जो है वो अपने जो इक्विपमेंट है उसके अंदर ये यूज करते हैं और जो वॉर है यूक्रेन के खिलाफ वो लुकने का नाम नहीं ले रही है। मैथ्यू एवरॉड जो है असिस्टेंट कॉमर्स सेक्रेटरी जो कि लीड कर रहे हैं यूएस एफर्ट्स टू कीप सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द यूएस एडवर्सरीज उन्होंने कहा जी कि हमारा एडवर्सरी है ये जो मॉस्को है और अंकारा जो है ये एक क्रिटिकल हब बनता जा रहा है जहां से कि ये सारा कुछ सामान जो है रशिया के अंदर जा रहा है। उनका कहना था कि तुर्की जो है वो बिल्कुल ये ट्रेड जो है बंद करे जिसमें कि यूएस ओरिजिन के चिप्स और दूसरे पार्ट्स जो हैं बड़े वाइटल हैं मॉस्को के लिए वो उसको दिए जा रहे हैं। उन्होंने वार्न किया आज तुर्की को कि आप जो है ये अपने टाइज फॉरन इनके साथ इस तरह के रोके वरना हमारे साथ आपके टाइज खराब होंगे क्योंकि जाहिर है कि अमरीका और तुर्की ये दोनों ही नेटो का हिस्सा है तो उसके ऊपर आपको पता ही है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन और बाकी कुछ और भी वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़े स्वीपिंग सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर तो ये जो कुछ मुल्क उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर अमरीका का जो है बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है इससे और इसीलिए उन्होंने कहा जी कि ये आप ना करें। इलाके में जो मिडल ईस्ट है वहां पे प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं कि अब अमेरिका ने आज के दिन जो है F-22 स्टेल्थ वॉर प्लेन्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में भेजे हैं। यूएस मिलिट्री ने आज कहा है कि वाशिंगटन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ईरान अटैक करेगा इसराइल पे और इसराइल को हमको बचाने की जरूरत है। यूएस सेंट्रल कमांड जो है उसका कहना था सोशल मीडिया के ऊपर कि हम डिप्लॉय कर रहे हैं पार्ट ऑफ द फोर्स पॉस्चर रीजन के अंदर, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहां पे ईरान और उसके प्रॉक्सीज जो हैं वो वॉर लेकर आ सकते हैं। एग्जैक्ट उसका नंबर के कितने इन्होंने F-22 स्टेल्थ भेजे हैं या कि उसका लोकेशन क्या है प्लेन्स का, वो इन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं बताया यूएस मिलिटरी ने। पेंटागन का कहना था कि लास्ट वीक जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन ने इसके हमको ऑर्डर दिए थे और उन्होंने कहा था कि इनको जो है स्टेशन करने की जरूरत है मिडल ईस्ट के अंदर, और उन्होंने वॉरशिप्स और फाइटर स्क्वाड्रन जो था वो मांगा था। 7 यूएस पर्सनल जो थे उनके ऊपर अभी जो है दिस वीक के बिगनिंग में ही इराक के अंदर अटैक किया गया था, जिसके के अंदर इनके ये 7 यूएस पर्सनल वुंडेड हैं बहुत बुरे तरीके से, और यूएस ने ब्लेम किया था कि ईरान बैक्ड एक मिलिशिया ग्रुप है जिसने ये किया, यानी कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह को नहीं बोला लेकिन उन्होंने कहा कि एक और कोई जो ग्रुप है वो ये कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरान इनके पीछे है, तो इसलिए जो है जरूरी है कि ये सारा वॉर रेडी जो है वो इसराइल रहे, और उन्होंने ये चीजें आज भेजी हैं। एक ऑस्ट्रियन बच्चा 19 इयर्स का, उसको आज ऑस्ट्रियन पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पकड़ी हैं, और ये जो एक प्लॉट कर रहा था टू अटैक टेलर स्विफ्ट के जो कॉन्सर्ट्स होने वाले थे इसके फैंस पे, ये सारा जो आज मास्टरमाइंड है उसको फॉइल किया है। ये जो कॉन्सर्ट्स थे ये वियना के अंदर थे और वो ये सोच रहा था कि ये बॉम्ब से और नाइफ्स जो हैं उनसे ये करेगा। जो इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने की हैं उसमें उन्होंने कहा है जी, खासतौर पे जो नॉर्थ जो जो इनके पुलिस चीफ हैं पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल जो है ऑस्ट्रिया के फ्रांस रूफ, उन्होंने कहा जब हमने इसके साथ बातचीत की तो इसने फुली कन्फेस किया कि ये कर रहा था। ये जो मेन सस्पेक्ट है ये नॉर्दर्न मैसेडोनिया का से इसके रूट्स हैं, और ये कह रहा था कि मैं वहां पे जाके बॉम्ब्स और नाइफ से इनके ऊपर अटैक करूंगा। तकरीबन ये जो था 20,000 का जो था क्राउड बाहर वेन्यू से बाहर उसके अंदर ये करने की कोशिश कर रहा था। और एक और बात जो उन्होंने फाइंड आउट किया वो कहते हैं जी कि ये लड़का जो था आइसिस से इंस्पायर्ड है, और इसके घर से जो कि टर्नीस टाउन के अंदर है वहां से बहुत सारा केमिकल और टेक्निकल मटेरियल जो है वो भी मिला है। नेशनल इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उमर हिजावी पिरचरनर, उन्होंने कहा है जी कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है कि कोई दूसरे भी कॉन्सर्ट्स के अंदर थ्रेट्स आ सकते हैं। ये जो था ये मेन सस्पेक्ट था। दो दूसरे जो ऑस्ट्रियन यूथ हैं उनकी जरा आप उम्रें देखें, एक की उम्र 17 साल की थी और एक 15 साल का, यानी ये बच्चों की एज देखो, ये मेन जो सस्पेक्ट है वो 19 साल का है, दूसरे जो दो बच्चे इसका साथ दे रहे थे इनको छुरियां मारने और बॉम्ब उड़ाने की उनकी उम्र 17 और 15 है। तो ये सारा जो था ये फॉइल कर लिया गया है, जाहिर है कि इसको पकड़ लिया इस प्लॉट को, ये सब कुछ नहीं हो सका। जो टेलर स्विफ्ट का जो कॉन्सर्ट होने वाले थे वियना के अंदर जो आज से होने थे स्टार्ट होने थे आज थर्सडे से, वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट थे। 65,000 ऑडियंस जो थी वो यहां पे आ रही थी, जिनको के फिर कहा गया कि आप अपना यहां पे आना जो है वो कैंसिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे आसपास के ऑस्ट्रिया के जो आसपास के इलाके थे वहां से भी आए हुए थे यहां पे कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए, तो बहुत सारा उनका जाहिर है कि नुकसान हुआ। ऑस्ट्रियन जो अथॉरिटीज है उन्होंने कहा जी कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यूएस की इंटेलिजेंस ने दिया था। इंटीरियर मिनिस्टर गर्हर्ड कार्नर जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि यस, जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टिगेटिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी हेल्प की वजह से हमने इसको पकड़ा है, क्योंकि हमारे जो प्रिवेसी लॉज हैं ऑस्ट्रिया के अंदर उसके अंडर हम किसी के मैसेंजर एप्स जो हैं उनको मॉनिटर नहीं करते हैं। तो जनाब अब नहीं करते हैं तो बहरहाल बच गए आप, वरना तो बड़ा ही गदर हो जाता फिर से एक दफा, जैसे लंदन में हुआ था कॉन्सर्ट में। और जनाब नोबेल लॉरिएट जो हैं बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, 84 इयर्स उनकी एज है, ही हैज बीन स्वोर्न इन एज चीफ एडवाइजर टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। और वो जो हैं आपको मैंने बताया था दो दिन पहले कि पेरिस में थे, पेरिस से आज ढाका में आए, और उन्होंने आते सारी सबको कहा है कि बिल्कुल जी काम क्वाइट हो जाएं, और उन्होंने अपील की है बंगालीज को कि भाई चलो ये सारा कुछ शोर हंगामा जो है और ये लड़ाई झगड़ा जो था खत्म करो, क्योंकि हसीना तो चली गई हैं और मुल्क को जो है बिल्ड करने की हमको बहुत जरूरत है। प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे उन्होंने इनको जो है एडमिनिस्टर किया था ओथ, और ये गए हुए थे पेरिस में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये जो अब वापस आए हैं तो इसमें जो अब ये इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है उसमें पता चला है सोर्सेज के मुताबिक कि इसमें 15 लोग होंगे, शायद एक या दो और को ज्यादा ऐड किया जाएगा। यूनुस साहब ने रिपोर्टर्स से जब ये ढाका एयरपोर्ट पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा विक्ट्री का दिन है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने अपनी सेकेंड इंडिपेंडेंस विन की है। उनको आज ग्रीट करने के लिए टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स और स्टूडेंट लीडर्स जो थे वो यहां पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को कहा जी कि आप बिल्कुल ये अब सब कुछ खत्म कर दें एंड मूव अहेड, और उन्होंने कहा जी कि वी नीड टू ब्रिंग पीस, और ये पीस रिस्टोर करने की हमें जरूरत है। जो वायलेंस वीक से हो रही थी जिसके के अंदर तकरीबन 455 लोगों की डेथ्स जो हैं अभी तक बांग्लादेश में हो चुकी हैं। इन्होंने कहा जी कि सिटीजन्स जो हैं वो अब एक दूसरे को गार्ड करें, और इवन माइनॉरिटीज को भी आप गार्ड करें, उनको कोई अटैक ना करें, और लेट्स मूव फॉरवर्ड, और ये जो फिक्स करें हम लॉ एंड ऑर्डर की यहां पे सिचुएशन। उन्होंने कहा जी अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और अगर आप मुझे यहां पे लाए हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी पे अटैक ना करो, अपने मुल्क के अंदर हंगामा मत करो, एक दूसरे का ख्याल करो, जो कुछ कोई भी इस मुल्क में है वो हमारा भाई है, हम उसका ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश इज वन बिग फैमिली, तो ये जो है फैमिली की तरह इनका ख्याल करें। उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत ज्यादा रो पड़े जो है यूनुस साहब, वो रो पड़े जब उनको ये जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट अबू सईद जो था जिसको कि जुलाई के महीने में पुलिस ने गोली मार के मार दिया था, उसके बारे में उन्होंने याद किया और उसको बड़े रिच ट्रिब्यूट्स दिए, क्योंकि ये वो लड़का था जिसने ये सारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी। तो उन्होंने आज कहा जी कि हमको जो है बड़ा गर्व है इसके ऊपर, यानी बड़े हम प्राउड फील करते हैं कि इसने अपनी एक नेशन को बचाया है और इस जो नेशन है इसको नई लाइफ दी है। शेख हसीना के जो बेटे हैं साजिद वजीर जॉय, उन्होंने आज फिर से ब्लेम किया है एक दफा पाकिस्तान की ISI को। उन्होंने कहा जी ये सारा अनरेस्ट जो था बांग्लादेश में ये पाकिस्तान की ISI लाई थी, और उसने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप जरा प्रेशराइज करें बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कि यहां पे डेमोक्रेसी जल्दी से आए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम वापस आएंगे। इसके साथ साथ इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स जो हैं उन्होंने आज अनाउंस किया है कि बांग्लादेश के अंदर जितने उनके सेंटर्स हैं वो टिल फर्दर नोटिस सब बंद रहेंगे जब तक कि ये सारा कुछ काम नहीं आ जाता। और कल तो मैंने आपको बताया ही था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इन चीजों को बहुत क्लोजली बांग्लादेश में मॉनिटर कर रहे हैं। और जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह। राजा बादशाह जी जो हैं वो आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस देते हैं और बिल्कुल राइट कवरेज देते हैं। राजा बादशाह से अगर आपको ये सुविधाएं चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 8647290373। और पायल ज्वेलर्स पे बड़ी जबरदस्त ज्वेलरी है दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान की। दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन में। इनका नंबर है 9057907879। अगर आपके कोई भी छोटे बड़े इवेंट्स हैं तो आप इनको कॉल करके कुछ अगर आप गोल्ड का किसी को देना चाहते हैं तो आप इनके पास जा सकते हैं। डॉक्टर फियाज कुरैशी जनाब भी हमारे एक स्पॉन्सर हैं। इनके तीन क्लिनिक्स हैं, दो मिसिसागा में और एक स्कारब्रो में। मिसिसागा के जो इनके क्लिनिक्स हैं उसका नंबर है 9052325678, और जो स्कारब्रो में है उसका नंबर है 4167579999। तो आप उनको कॉल कर लें और आप उनसे सुविधाएं ले लें दांतों की, दंद अपने चिट्टे करा लो, पीले दंद जड़े, ठीक है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि जो कोऑपरेशन है गवर्नमेंट के और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में जो है आज से पहले कभी इतना नहीं था। वो कहते हैं जी मैं पिछले 40 साल से पॉलिटिकल जो है वो एरेना में हूं, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात पार्टीज के बीच में कभी भी नहीं थे और इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं थे। उन्होंने कहा जी PMLN गवर्नमेंट जो है वो दिन रात काम कर रही है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करे और ये जितने चैलेंजेस हैं इनको खत्म किया जाए। आर्मी जो थी उसने अपने 265th कॉर्प्स कमांडर जो कॉन्फ्रेंस की थी लास्ट मंथ, उसमें उन्होंने कहा था कि वो सिविलियन गवर्नमेंट को सारी हेल्प देंगे, तो उसी का जिक्र जो है आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया। उन्होंने कहा जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके दिल के बड़ा करीब है कंट्री का जो इंटरेस्ट है, और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस वापस लाने में और ग्रोथ में बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रीवियस रिजीम्स का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमको सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस काफी हैं, पिछले 77 इयर्स में काफी हमसे गलतियां हुई, लेकिन अब वक्त है कि हम उन गलतियों से सीखें, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, हमने बहुत कुछ खो तो दिया है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ कुरान के मुताबिक चलाएंगे तो हम सीधे रास्ते पे जाएंगे। मतलब हर चीज दे विच रिलीजन इन लैंड, भाईजान तुम कितना कुरान के मुताबिक अपनी लाइफ चला रहे हो, चोरियां डाके तुम कीते हो, इन मुल्क तो तुम नस जाते हो, कोई चीजें आप फेस करते नहीं है, अपनी अपने सारे खानदान को जो है मरूसी आपने वो सियासत बनाया हुआ है, और आप पाकिस्तान को जो अपनी प्रॉपर्टी समझ के बैठे हैं, पहले आपका भाई फिर आप फिर आपका बच्चा फिर आपके भाई की बेटी, उस तरह आप रन कर रहे हैं चीजों को, और कुरान के आप और हदीस के आप नाम लेते हैं और फिर कहते हैं जी कि सिविलियन गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी सीओएएस जो है चीफ ऑफ आर्मी साहब वो हमारे साथ बड़े प्यार से चल रहे हैं। और भाई तुम क्यों मिलिट्री को हर चीज में और कुरान को और रिलीजन को हर चीज में लेकर आ जाते हो भाईजान? तो बहरहाल जी ये इन्होंने कहा जी कि हम जल्द ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमारी जान छूटेगी और हम बहुत क्लोज कंसल्टेशन कर रहे हैं बीबी जरदारी और प्रेसिडेंट जरदारी के साथ भी। और फिर से उन्होंने एंड पे अपनी स्पीच के कहा कि जी आर्मी चीफ भी हमारे साथ मिलकर बैठते हैं। वाह वाह बड़ी अच्छी भाई सिविलियन गवर्नमेंट चला रहे हो तुम, वाह क्या बात है जी। अच्छा जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट है लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है ये बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये जो विजिलेंट आप रहे हैं ये जो लोग एनआरकी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे वो ना फैलाएं। मैनू समझ नहीं आती आसिम मुनीर साहब तुसी रोज आके एक बयान देंदे हो, आप अनाउंस क्यों नहीं कर देते हो आसिम मुनीर साहब के मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव आप हो, आप हो, आपका क्या दुनिया के किस हिस्से में आप मिलिट्री चीफ को देख रहे हो कि वो रोज आके इस तरह टीवी पे बैठ के बयान दे रहा है या जी अपनी आईएसबीआर की प्रेस रिलीजें जो है। जब किसी एक मुल्क का आप नाम ले लो, बांग्लादेश का ही नाम ले लो आप उसी के आर्मी चीफ का नाम ले लो, आप ले लो इंडिया का, नेपाल का, श्रीलंका का, किसी वेस्टर्न कंट्रीज को तो आप छोड़ ही दें, वो तो आपसे बहुत आगे निकल गए हुए हैं। रोज आप आके एक बयान दे देते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर हम एक दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। आपके ऊपर जो आज रिपोर्ट आई है वो जो रिपोर्टर्स हैं मुर्तजा हुसैन वगैरह एंड रायन ग्रिम के, आप लोग किस तरह सोशल मीडिया को खिलाफ लोगों के अपने ही लोगों के खिलाफ यूज करें, वो रिपोर्ट आपने पढ़ी है आसिम मुनीर साहब? वो रिपोर्ट जरा आप पढ़ लें, आपके सारे कच्चे चट्टे जो है ना उसमें उन्होंने खोल दिए हुए हैं, जरा आप पढ़ लें। रोज आके बयान दे देते हैं आप, हम ये नहीं करने देंगे। और भाई आप कौन हो? आप मिलिट्री के अफसर हो, आप वो काम करो, आपका काम है मुल्क की हिफाजत करना, आप वो करो। अच्छा जी बहरहाल जी आज फिर बड़ी पैशनेट इन्होंने तकरीर जो है वो की है, ये एड्रेस कर रहे थे नेशनल कन्वेंशन ऑफ स्कॉलर्स पे और वो कह रहे थे जी कि जो अल्लाह को हाजिर नाजर जानता है और उसको फॉलो करता है वो अल्लाह की जमीन के ऊपर केओस नहीं पैदा करता। भाईजान भाईजान आपने पाकिस्तान के अंदर कितना केओस आपकी वजह से, आप क्या बातें कर रहे हो, आपको होश है, आप बात क्या कर रहे हो? पाकिस्तान में तो आपने केओस क्रिएट किया, फिर अल्लाह रसूल का आप नाम ले रहे हो कि अल्लाह कहता है जी अल्लाह की जमीन पे केओस मत करो, तो क्यों फिर पाकिस्तान में आपने केओस क्रिएट किया हुआ है? फिर जी इन्होंने कहा कि जो लोग शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं वो पाकिस्तानी है, जो इसको फॉलो नहीं करते वो पाकिस्तानी नहीं है। तो भाईजान जो उधर हिंदू सिख क्रिश्चियन ज्यूज भाई जैन जो उधर रह रहे हैं वो मतलब है, वो अगर आपके शरिया को फॉलो नहीं करते तो वो जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। वाह 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 क्या बात है जी, क्या बात है आपकी। फिर आप कहते हैं जी कि हम दुनिया के किसी हिस्से में जाएं तो हमारे पाकिस्तानियों के साथ दुनिया बड़ा अच्छा सलूक करे लेकिन हमने अपने मुल्क में किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करना, वाह क्या बात है। तो जनाब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने आज एक नई बात की है कि जो सिर्फ शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं वो असल में पाकिस्तानी है, तो बाकी के जो बेचारे शरिया को फॉलो नहीं कर रहे वो पाकिस्तानी भी नहीं है। अच्छा जी इन्होंने कहा जी कि हम जो है मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब भी कभी हम एनआरकी देखेंगे तो या केओस देखेंगे तो हमेशा मिलिट्री उसके खिलाफ खड़ी रहेगी और उसको खत्म करके। भाईजान अपने गिरफ्तार में जाके देखो, एनआरकी तो आप ही चला रहे हो। अच्छा जी फिर इन्होंने कहा जी एक और स्पीच, मतलब उसी स्पीच में इन्होंने बड़ा पैशनेटली बोला, उन्होंने कहा जी ये जो स्मगलिंग माफियाज हैं ये पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो भाईजान आपका अगर ध्यान जो है बॉर्डर के ऊपर होएगा तो आप टेररिज्म रोकोगे ना? आप तो कभी एग्रीकल्चर में आ रहे हो, कभी आप मुल्क को सुधारने की बातें कर रहे हो, कभी आप डिजिटल टेररिज्म में आ रहे हो, कभी 9 मई के लोगों को आप सजाएं दे रहे हो, तो आप कैसे टेररिज्म मुल्क में जो आ रहा है उसको रोकेंगे, है ना? अच्छा फिर वो कहते हैं जी कि पिछले 40 साल से हमने अफगानियों का बड़ा साथ दिया है और अफगानियों की तरफ से जो है ये फितना अल खवारिज टीटीपी जो है ये कॉन्स्टेंटली आके पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, तो हम उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम मुसलमान भाई हैं, तो आप जो है ये फितना अल खवारिज जो है इसको कंटेन करें और इसके ऊपर जो है आप नहीं करें, हमारे मुल्क में टेररिज्म नहीं करें, इसको रोकें। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो इराक सीरिया और लीबिया है उनके लोगों से जाके पूछो मुल्क की इम्पोर्टेंस। तो भाईजाना आप अपने आप से भी पूछो, आप कितना केओस मुल्क में क्रिएट कर रहे हो, तो बस जी वो उनसे पूछो कि मुल्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो लोग टू नेशन थ्योरी की बात करते थे वो बे ऑफ बंगाल जो है उसमें जो है वो डूब गए हैं उनकी थियरीज। और फिर उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का मसला जो है वो हल होना चाहिए, पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा था और बड़ा उन्होंने रिग्रेट किया जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है। इमरान खान साहब जो हैं जी वो आज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनकम्बेंट रूलर्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मिलिट्री को प्रोवोक कर रहे हैं कि मेरी पार्टी के साथ जो है वो लड़ाई करें, तो आसिफ मुनीर साहब के साथ और पीटीआई की हमेशा लड़ाई वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि May 9 का जो है मुद्दा जो है वो बनाया हुआ है कॉन्स्टेंटली, और इन्होंने क्लैरिफाई भी किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो मैंने कहा था कि मैं बातचीत करूंगा वो मुल्क के सेक के लिए करूंगा, आपने इस चीज को सारी को डिस्टॉर्ट कर दिया और तोड़ दिया, आपने शायद ये समझा कि मैं उनके साथ डील बना के जेल से वापस आना चाहता हूं। नहीं, मैंने ये बात नहीं की, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ टॉक्स करूंगा इन द लार्जर पब्लिक एंड कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसके लिए। इसके अलावा उन्होंने अपने जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उनको कहा कि आप नेशन वाइड पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो होल्ड करें और परमिशन जो है प्रॉपरली उसकी अथॉरिटीज के साथ लें, अथॉरिटीज के साथ बिल्कुल कन्फ्रंटेशन नहीं करना और कोई इल्लीगल स्टेप आपने बिल्कुल नहीं लेना है। और उन्होंने कहा जी कि एडवाइस जो है मैं दे रहा हूं और भी बहुत सारी चीजों को। ये इनकी मुलाकात जो थी ये उन्होंने सारी बातें उस वक्त की जब इनकी मुलाकातें केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ अडियाला जेल में हो रही थी और उनके साथ फिर इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स जो थी डिस्कस की थी और बाद में बात की थी। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब ने जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ भी मुलाकातें की, एक मेक शिफ्ट कोर्ट रूम जो था जो कि अडियाला जेल के अंदर बनाया गया है वहां पे जहां पे के ये जो है आज मीडिया से मिले थे, और इन्होंने आज उनको कहा जी कि ये जो इनकम्बेंट या ये जो करंट गवर्नमेंट है ये 2 महीने भी नहीं चलेगी, ये जो है ये फूल्स हैं, ये रूलर्स जो हैं इनको नजर नहीं आ रहा है कि इनके सामने क्या हो रहा है, इनको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ये, और इनके पास मेरे पास बहुत सारा टाइम है लेकिन इनके पास कोई टाइम नहीं है। इन्होंने कहा जी कि मैंने जो ये कहा था कि मैं अपोलोजाइज करूंगा May 9 के राइट्स के लिए, इसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, शायद ये कहा जा रहा है कि अब ये अनकंडीशनल अपोलॉजी देगा मिलिट्री को, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर पीटीआई के एक्टिविस्ट इन्वॉल्व है May 9 में फिर मैं सॉरी बोलूंगा। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं उनकी और उनकी वाइफ जो है बुशरा बीबी उनके लिए 11 डे फिजिकल रिमांड जो है वो बढ़ा दिया गया है न्यू तोशाखाना केस, और इसके साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान था वहां पे इमरान खान साहब को चूंकि पूरा 1 साल हो गया जेल में तो उन्होंने आज अपने लीडर को याद किया और डिमांड किया कि इमीडिएटली इनको निकालें। इस मौके पर बात करते हुए इनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा उन्होंने कहा खान को कुछ भी नहीं चाहिए, उसके कोई नीड्स नहीं है, उसका सिर्फ एक कॉज है जिसके पीछे वो जेल में बैठा हुआ है। इसके ऊपर बात करते हुए माइकल कुगलमैन जो कि डायरेक्टर है ऑफ साउथ एशियन इंस्टीट्यूट एट विल्सन सेंटर जो कि थिंक टैंक है वाशिंगटन के अंदर, उन्होंने भी कहा जी इमरान खान जैसे आदमी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या वो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी जिंदगी को ईजी बनाएगा, नहीं, जिंदगी अपनी को मुश्किल करेगा लेकिन अपनी बात पर डटा रहेगा। ठीक है जी, असी तो यह समझने यहां पर पाया और कोई समझे ना समझे और की कर सकते हैं असी। ठीक है जी, अच्छा जनाब प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो हैं जी आज उन्होंने साइन कर दिया है इलेक्शंस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 जिसके के अंदर जो इंडिपेंडेंट लॉ मेकर्स हैं अब वो स्विच करके किसी पार्टी का साथ नहीं दे सकेंगे। जाहिर है कि वो चाहते नहीं है कि पीटीआई की गवर्नमेंट बने। ये बिल जो है ये इससे पहले जो है ये भेजा गया था सेनेट सेक्रेटेरिएट में अब कि इसके ऊपर जो है इशू एक करें नोटिफिकेशन, और आपको पता ही हमने आपको बताया था कि नेशनल असेंबली में और सेनेट के अंदर ये जो है ये सेल थ्रू कर गया था। इसके ऊपर काफी पीटीआई के लोगों ने शोर मचाया था और उन्होंने कहा था कि हम इस चीज को बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उन्होंने किया भी है। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसने भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है कि ये जो आपका July 12 का वर्डिक्ट था ये बिल्कुल ठीक नहीं है ऑन रिजर्व सीट, इसके ऊपर आप गौर करो थोड़ा। और बिल जो था इसको टेबल किया था PMLN के लॉ मेकर जो हैं बिलाल अजहर कियानी ने लास्ट मंथ, और जो है वो उसके ऊपर फिर जो है ऑपोजिशन के बेंचेस से काफी रेजिस्टेंस जो थी वो आई थी। जमात इस्लामी के डेप्यूटी अमीर जो हैं लियाकत बलोच साहब उन्होंने सुबह के वक्त एक प्रेसर में एट कमिश्नर्स हाउस रावलपिंडी में कहा कि हमारा ये जो सिट इन है जो 2 हफ्ते से रावलपिंडी के अंदर जारी है ये कंटिन्यू रहेगा और अब हम मार्च करेंगे मरी रोड की तरफ क्योंकि हमारी जो 4 राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो सबके सब फेल हो गए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले शाम में इनका 5th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ और उन्होंने कहा जी कि अब हम अपना सिट इन एंड कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे सारे के सारे जो हमारा 6 पॉइंट डिमांड था वो सबका सब मान लिया है। इसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि आप अपने टैक्स रेट्स को रिवाइज करें, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीज जो हैं इनके साथ जो आपकी डील्स हैं उसको रिव्यू करें, कट करें इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स, फ्यूल के रेट्स कट करें क्योंकि मैसेज जो है बहुत प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने अब चूंकि हमारी सारी बातें मान ली हैं तो इसलिए हम ये अपना सिट इन खत्म कर रहे हैं। ये टॉक्स जो थी इनकी चल रही थी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ। हिंदुस्तान के अंदर आज जो ऑपोजिशन भड़की रही वो कांग्रेस और बीजेपी आपस में नहीं बल्कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो नया बिल अमेंड जो उन्होंने किया है उसके ऊपर आज सारी ऑपोजिशन फिर से भड़की रही। ये जो कंटेंशियस बिल है टू अमेंड 44 सेक्शंस ऑफ वक्फ एक्ट 1995 इसके ऊपर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बहुत सारे जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी इसके ऊपर बहुत भड़के। मुसलमानों ने कहा कि ये कम्युनिटी के मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस है और ये जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है आपके मुल्क की उसको सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट जो उसका हम चाहते हैं उसमें और उसको आप पीछे धकेल देंगे। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा ये वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की आप कोशिश कर रहे हैं और अब हम एक रिटन पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के अंदर डालेंगे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन अलबत्ता जो है उन्होंने जनाब बीजेपी की गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये चेंजेस बड़े ओवरड्यू थे तो इसलिए ये आने ही चाहिए थे। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के जो चेयरमैन हैं जफरुल्ला इस्लाम उन्होंने कहा जी ये जो न्यू अमेंडमेंट्स आए हैं ये कलेक्टर राज लेकर इस मुल्क के अंदर आएंगे और ये वक्फ के ऊपर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वक्फ जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसके अंदर मुफ्ती होते हैं जो कि अपने वर्डिक्ट्स देते हैं, एक कलेक्टर को उसके ऊपर बिठा देंगे तो वो कैसे जो है इसके ऊपर करेगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसको भी जो है इस्लाम के बारे में तमाम कुछ पता होए। मोदी गवर्नमेंट जी उन्होंने कहा जी मोदी गवर्नमेंट का ये ट्रेडिशन है कि बगैर मुसलमानों को कंसल्ट किए हुए वो मुसलमान कम्युनिटी के बारे में ऑर्डर्स जारी कर देते हैं। ऑपोजिशन जो थी वो भी भड़की रही। उन्होंने कहा जी ये बिल जो है जिसमें कि कर्टेल की जा रही है वक्फ बोर्ड की पावर्स और सेंटर को दी जा रही है तो इसके अंदर अब बहुत सारे नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो हैं आ जाएंगे और बहुत से नॉन मुस्लिम औरतें भी आ जाएंगे, मर्द खाली नहीं इसके अंदर आएंगे जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने कहा जी कि एनी नोटिफिकेशन टू 1995 एक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इनके जो स्पोक्स पर्सन है कासिम रसूल इलियास उन्होंने कहा जी बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये चेंजेस जो कर रही है ये सारी की सारी पावर एक कलेक्टर को वो शिफ्ट कर रहे हैं और वक्फ को पावरलेस कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में या तो मसले उठेंगे या झगड़े उठेंगे तो वक्फ बोर्ड उसका कुछ भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड शरिया कोई उसका नहीं कर सकेगा फैसला। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जो लोग हैं उनका आप राइट जो है वो चोरी कर रहे हो और ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि बात ये एटलीस्ट ये ठीक है। वक्फ के बारे यानी कि मुझे कोई बोल दे जी कि रामायण एक हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं उसका हेड जा दिया बीबी आपको, अब रामायण के बारे में अगर मुझे पता ही नहीं है तो उसका मैं हेड बन के कैसे मैं मतलब मजहब की जो बातें हैं ना उनके लिए वैसे तो हर चीज के लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए लेकिन मजहब की इंटरप्रिटेशन के लिए जरा लोग थोड़ा आपको पता है वैसे भी जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा जनाब आज एक और भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा और ये तो अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो वो भी भरा हुआ था और इंडिया के अखबार जो थे उसमें भी आज बहुत ज्यादा ये जो है ये इसको बैश किया गया इस चीज को। 9 महीने से पंजाब और हरियाणा का जो चल रहा था इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हाईकोर्ट जो थी हरियाणा और पंजाब की उसने कहा था कि ये जो क्रिमिनल है लॉरेंस बिश्नोई इससे आप पूछें कि इसके कनेक्शंस जो हैं कहां जाके मिलते हैं, ये कस्टडी में है और कस्टडी में ही इसने बेशुमार इंटरव्यूज ही दिए थे। उसके ऊपर जनता भड़क गई थी और वो उन्होंने कोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट को कहा था भाई ये इतना बड़ा क्रिमिनल जो कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के अंदर इन्वॉल्व है अलेजली और जो अलेजली करता रहता है वार्निंग्स और थ्रेट्स देता रहता है सलमान खान को, उसके इंटरव्यूज आप कैसे करवा रहे हैं क्योंकि अगर आप उसके इंटरव्यूज करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये जब बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि एसआईटी की एक टीम जो है वो बनाई जाए और वो फाइंड आउट किया जाए कि ये कैसे जो है ये हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि नहीं, जिस वक्त ये लड़का हमारी कस्टडी में था या जेल में था ये बिल्कुल इंटरव्यूज नहीं दे रहा था। लेकिन अब यू नो कैट इज आउट ऑफ द बैग्स। एसआईटी की ये जो बनाई गई थी टीम, टू मेंबर हाई पावर्ड कमेटी जो थी, इसकी आज जो रिपोर्ट आई है, इसने कहा जी इसके इंटरव्यूज उसी वक्त हुए थे जब इसको जेल में पकड़ के डाला था, जिसकी के वजह से जनता जो है वो तो बड़ा भड़क गई और उन्होंने आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है भगवंत मान साहब को भी बड़ा खींचा। डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अनुपिंदर सिंह गिरेवाल और जस्टिस लपिता बैनर्जी जो थे, उन्होंने कहा जी कि हमको ये सारा फाइंड आउट करने के लिए 8 महीने लग गए और इन्होंने ये जो तमाशा किया, इसके जो इंटरव्यूज कराए, इन्होंने कोर्ट का भी मजाक उड़ाया, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के भी मजाक उड़ाए, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और हमको जो है कोर्ट ने कहा था कि जो जितने सोसाइटी के अंदर ब्लैक शीप है उनको आप आइडेंटिफाई करो और उसको फिर सजा दी जाएगी, तो ये तो खुद ही गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व बैठी हमें मिली है, तो अब इसका क्या किया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसने कहा था जी कि हमेशा ये होता है कि जिस वक्त इस तरह की हाई प्रोफाइल जो होती हैं इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे बेचारे अफसरों को पकड़ लिया जाता है और बड़े अफसरों को छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा था कि किसी छोटे अफसर को नहीं पकड़ना, सारे बड़े अफसरों के साथ आप शुरू करें। बिश्नोई जो है ही इज इन्वॉल्व इन 71 केसेज इन पंजाब, जिसमें से 4 के अंदर इसकी कन्विक्शन भी इसको आई हैं। तो जनाब जनता आज भड़की। संजय दत्त साहब जनाब 65 ईयर्स के हो चुके हैं और अब अपनी जो अपकमिंग इनकी फिल्म है डबल आई स्मार्ट उसको ये कर रहे हैं प्रोमोट, लेकिन आज इस मौके पे इनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा जी कि मुझे हमेशा अब ये जो है ये दे देते हैं एक्शन वाले रोल। 1991 की जो हिट मूवी थी साजन, वैसी फिल्में जो है वो मैं करना चाहता हूं, 40 साल का मुझे तजर्बा है, लेकिन रोमांटिक फिल्में अब लोग मुझे नहीं देते हैं, तो हम जो हैं लोग मैसेज जो हैं जो पसंद करते हैं तो वही वो देते हैं, तो मैं बड़ा मैसी हीरो बन गया हूं, लेकिन मैं जो है रोमांटिक रोल्स करना चाहता हूं। साजन जो है आपको पता ही है बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसके गाने भी बड़े जबरदस्त थे, जिसके के अंदर संजय दत्त ने एक बड़ा सेंसिटिव पोइट का रोल प्ले किया था, उसके अंदर माधुरी दीक्षित और सलमान खान भी थे और इसको डायरेक्ट किया था लॉरेंस भाईजान, लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, लॉरेंस डिसूजा ने लॉरेंस डिसूजा ने उसको जो है डायरेक्ट किया था। और आज बड़े ही जो है रेवलेशन किए हैं फिल्म मेकर विक्रम भट्ट साहब ने भी, और उन्होंने कहा जी कि जब हम राज बना रहे थे दीनू मौर्या और बिपाशा बासु के साथ, तो उस वक्त इनका जो है वो ब्रेकअप चल रहा था और दोनों का ही मूड बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन हम तो इनको फिल्म के लिए साइन कर चुके थे तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम इनको कैसे बोलें कि भाई प्यार मोहब्बत से गुड़ी गुड़ी होके तुम जो है ये फिल्म के ऊपर काम करो। वो कहते हैं जी खासतौर पर जब ये वेडिंग का सॉन्ग आया मैं अगर सामने, और उसके अंदर जब वो लाइन आई अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं, जिस वक्त ये आए तो उस पे जी बिपाशा बासु ने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया, दीनू मौर्या बहुत अनहैप्पी हो गया, दोनों दूसरे कॉर्नर में बैठ गए। फिर मैंने इनको समझाया, मैंने कहा भाई सीज फायर करो, ये सिर्फ एक शूट है, ये फिल्म चल रही है, फिल्म को हमने खत्म करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रखो। वैसे तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ में जाता नहीं हूं, विक्रम भट्ट साहब ने कहा, लेकिन वो कहते हैं जी ये तो मौका ही ऐसा था कि ये चीजें खराब हो रही थी। फिर मैंने इनको दोनों के सुलह कराई, इनको फिर हमने साथ में लंच वंच किया और जो है फिर ये फिल्म बनी। ये दोनों जो है इनकी मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पे हुई थी, एक कॉमन फ्रेंड ने इनकी करवाई थी जब ये दोनों ही मॉडलिंग करते थे, और उसके बाद फिर इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो रहा 1996 से लेकर 2002 तक, लेकिन उसके बाद फिर ये टूट गया। और उसी वक्त उसी सोचा कि हूं मैं फिल्म बना ला, जिस वक्त इनकी जब प्यार मोहब्बत चल रही थी तब विक्रम भट्ट साहब आपने नहीं सोचा कि मैं फिल्म बना लू, जैसे ही उनका ब्रेकअप हुआ आपने सोचा जी मैं फिल्म बना लू, वाह वाह क्या बात है। और जनाब ऐश्वर्या रॉय अभिषेक बच्चन जिनके के बड़ा इनको बॉलीवुड में प्यार किया जाता है, बड़ा लविंग कपल है, और यानी कि मोस्ट लव्ड कपल है, लविंग तो है आपस में कि नहीं बट मोस्ट लव्ड कपल है, और दे आर टुगेदर सिंस 2007, लेकिन इनके बहुत सारे डिवोर्स के अब जो है न्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो रिसेंट इवेंट्स हैं उनमें अकेले अकेले आए हैं, खासतौर पर अनंत अंबानी की जो वेडिंग थी उसमें बहुत ये जो है चीज देखी गई। अब अभिषेक जो था वो अपने पेरेंट्स और बहन के साथ आया और ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ आई थी, लेकिन द स्टोरी इज इनसी इनकी ब्रेकअप होने से पहले इनकी भी एक स्टोरी आई है कि कि भाई शायद इनकी डिवोर्स हो जाए, लेकिन ये मिले कैसे और कहां मिले। अच्छा जी, ये दोनों मिले, स्टोरी आई कि उमरा और जानदा का जो शूट चल रहा था 2006 में, उसमें इन दोनों की मुलाकातें हुई थी और अभिषेक बच्चन ने उसी वक्त रियलाइज किया था कि उनको इनसे मोहब्बत हो गई है। और फिर जो है इनकी मोहब्बत, उन्होंने सोचा कि अब ये फ्रेंडशिप से आगे जा चुकी है और सीरियस हो गई है, तो उन्होंने फौरन ऐश्वर्या रॉय को प्रपोज कर दिया था उमरा और जान के सेट पे। और फिर कुछ अरसे के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। ठीक है जी, शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं जी, उन्होंने भी बड़ी हिस्ट्री आज क्रिएट की है। मतलब है एक बंदा नहीं है, और भी बंदे हैं। शाहीन शाह अफरीदी साहब हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज ही हैज बिकम द फर्स्ट मुस्लिम, द फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट टू ऑफिशियली लॉन्च द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल किट। ये विजिट कर रहे थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, जो कि मैन यूनाइटेड का होम है, इस स्पेशल इवेंट के लिए। और ये पार्टनर कर रहे हैं ये वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टीजियस जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टीजियस फुटबॉल क्लब्स जो है उनके साथ। इन्होंने जो है 10 नंबर की जर्सी भी पहनी हुई नजर आई, रेड कलर की है, उसके ऊपर लिखा हुआ है अफरीदी। जो क्लब है वो भी बेनतहा एक्साइटेड है इनके साथ काम करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि हम इसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और हमारा जो इसके साथ कोलेबोरेशन है बहुत मीनिंगफुल रहेगा, और अपने स्पेशल इस ऑफिशियल किट की लॉन्च के लिए हमने इसलिए इसको बुलाया क्योंकि हम रिकग्नाइज करते हैं इसका एथलेटिक अचीवमेंट और ये बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करता है स्पोर्ट्स में, तो इसलिए हम ये करते हैं। तो ये तो फर्स्ट सीजन है, हमें लग रहा है कि हम ऐसे ही आगे भी इनके साथ करते रहेंगे। इसके साथ साथ ये खबर आई कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने बैन किया आज जो बैट्समैन है इनके, एहसान उल्लाह जन्नत को, फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ जो क्रिकेट है उसमें। जन्नत इज जस्ट अबाउट 26 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ फॉर्मर अफगान स्किपर एंड सिलेक्टर नौरूज मंगल। ये जो अभी हो रही थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये अनाउंस किया कि जो लास्ट लीग चल रही थी उसके अंदर इसने स्पॉट फिक्सिंग की थी, और यानी कि जो डोमेस्टिक लीग थी उसके अंदर, और वो इसने कन्फेस किया है कि इसने किया। तो अकॉर्डिंग टू ACB रूल्स एंड ICC एंटी करप्शन कोड इसको निकाला जा रहा है फॉर व्हाट ही डिड फॉर इन काबुल प्रीमियर लीग का जो सेकंड सीजन था जो इस साल हो रहा था उसमें। एंड जनाब द बिग न्यूज, द रियल बिग 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 न्यूज टुडे इज पाकिस्तान के जो जेवलिन स्टार, मैं तो इसको स्टार ही बोलूंगी, जेवलिन स्टार जो है अरशद नदीम साहब, ही एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री इन मेनी वेज। न सिर्फ ये कि उन्होंने गोल्ड जीता, पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड था, बल्कि नीरज पांडे जो कि इंडिया के थे, वो डिफेंडिंग चैंपियन थे, उनको हराया। ही हैज एक्चुअली रिटन हिस्ट्री इन द 118-year हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स, जितनी दूर इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो किया है पेरिस के अंदर, इन्होंने जो है किया 92.97 मीटर्स पे जो है, जिससे के जो इससे पहले कभी किसी ने फेंका नहीं था। एथलीट्स जो थे इस मुकाबले में 12 कंट्रीज से थे। अरशद जो है वो पहले गए लीडर बोर्ड के ऊपर, लेकिन जो है वो उसके अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, अपने फर्स्ट राउंड में ये फेल हो गए थे, इनकी वैलिडेशन नहीं हो सकी थी थ्रो की। इसी तरह जो इंडिया के नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने भी जो थ्रो की थी वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि उनका फुट का फॉल्ट आ गया था। ग्रेनेडा के अलबत्ता जो एंडरसन पीटर्स थे, उन्होंने फिर लीड ले ली थी 87.87 मीटर थ्रो के साथ, लेकिन जब अरशद ने 92.97 मीटर्स फेंका तो ना सिर्फ इसने ओलंपिक रिकॉर्ड किया बल्कि इसने लीड ले ली। नीरज जो था उसने फिर थ्रो किया 89.45 मीटर्स पे और वो फिर अब सेकंड आया है, और थर्ड जो है वो पीटर्स को आए बिकॉज ही फेल टू इम्प्रूव। अरशद जो है उसने डोमिनेट किया अपनी जो है, फिर दूसरी दफा भी जब पीटर्स के साथ मुकाबला हुआ तो उसने 88.72 पे किया, लेकिन जाहिर है कि उसमें बेस्ट उन्होंने लिया। नीरज जो है उन्होंने अपनी जो मिस की थी अटेम्प्ट उसको फिर उन्होंने वो कर लिया, मेकअप कर लिया, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मेडल जीता है, ना सिर्फ मेडल जीता है बल्कि गोल्ड मेडल जीता है, जो पाकिस्तान ने आखिरी बार 1992 में जीता था, 32 ईयर्स बैक। इस मौके के ऊपर जो इन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत नीरज के साथ दिखाई थी और उनको कहा था कि हम दोनों मिलके खेलेंगे, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं आप खेल रहे हैं, तो इसके ऊपर अब इनकी जो मां है नीरज की सरोज देवी, उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस जो हैं ग्रेटली मैसेज जो हैं वो अरशद नदीम के लिए डाले हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे बेटे हो, वो भी मेरा बेटा है, तुम भी जीते हो, वो भी जीता है, तो मैं जो एज मां मैं बहुत खुश हूं, विच इज व्हाट अ वंडरफुल जेस्चर, अमेजिंग।
बिल्कुल जी, ये थी गर्मा गर्म खबरें आज की।
हाँ जी,
और जिस पे अशर नदीम साहब ने जो अच्छा, इस पे एक मीम मेरी नजर से गुजरी,
अच्छा।
वो मुझे बहुत पसंद, तो मैं बस एक मिनट ही है तकरीबन वापस।
अच्छा,
उसमें बात हो गई जो बच्चे, यानी हम अपने बच्चों को कहते हैं कि जो 92 का वर्ल्ड कप जो है वो जीता था हमने,
हाँ,
हाँ। तो हमारे बच्चे उनसे कहेंगे कि 92 मीटर्स की बातें करेंगे।
वाओ, वेरी नाइस।
एक ये मीम था कि एक तरफ 92 वर्ल्ड कप और एक तरफ लिखा हुआ था कि 92 मीटर्स की जो है वो अपने बच्चों को, हमारे बच्चे जो है आने वाली नस्ल को वो देंगे। और मजे की बात यह है कि इन्होंने जो फेंकी दूसरी भी वो भी 91.79 है, तो 92.97
अगेन ये सारों से आगे थे,
ये अगेन आगे थे। और अगर कोई अब इनका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ना भी है तो पहले तो इनका 91.79 से आगे जाना है और फिर ऑलमोस्ट 93 क्रॉस करना है,
तो
मुझे लगता है अच्छा रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, लेकिन ये लगता है
मुश्किल होगा
कि मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 90.57।
ऐसे अच्छा मैं जल्दी से कह दूं आमिर के जो आप लोगों ने क्रिकेट के जो टिकट्स आपने जीते हैं जी वो मैंने सारों को भेज दिए हैं, और मैंने फोन भी किया था। अजान साहब आपका अभी तक मुझे जो है मैसेज नहीं आया है, प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको मिल गया। ऐसा ना हो जैसे लास्ट टाइम हमने फिल्म की वो की थी, फिल्म खत्म होने के बाद हमें आया ओ जी मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने सारों को टिकट्स भेज दिए हैं, वी हैव डबल चेक द नंबर्स, सो प्लीज रिप्लाई टू अस के आप लोगों को जो है टिकट्स मिल गए हैं।
चले जनाब, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जी वो रिप्लाई कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका और तमाम नाजरीन का और सामीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। जनाब आपने कहीं नहीं आना, अब लियाकत भाई जो है अपना रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे, भूली बिसरी यादें, और तकरीबन 8:15 बजे तक ये प्रोग्राम सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, शाजी जी की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से, मैं आमिर अहमद की तरफ से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो फिर कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
बड़े भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गालिक जी सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी से डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाता। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
770 AMD नशियात सुनते हालात हाजरा।